کربلا کے اچھے کردار کون سے تھے، کربلا کے के पूरे किरदार के अच्छे। और हकीकत यह है जितना कल तक आपके सामने अर्ज किया और आज और कल का जो दिन है उसमें भी हम करबला की पूरी तारीख को रकम नहीं कर सके, पूरी तारीख के ऊपर रोशनी नहीं डाल सके। करबला में मुकम्मल तौर पर मुहर्रम की 10 तारीख रोजे आशूर तक क्या कुछ हुआ, अभी तो मक्का ही के अंदर की गुफ्तगू हो रही है तारीख के हवाले से। और आज इस दौर में हम खवातीन 1431 हिजरा में अपने वक्त के इमाम के लिए इमाम ज़माना हज़रत शरीफ
मोहम्मद
क्या काम अंजाम दे सकते हैं कि हम मुंतज़िर इमाम ज़माना कहलाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें अपना हुसैनी अपना चाहने वाला अपना शिया कबूल करें। करबला से मक्के में जब इमाम थे करबला की दास्तान के हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने कई लोग आए, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इराक जाने से रोका, कूफा जाने से मना किया। तभी अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की गुफ्तगू हुई थी और आज जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने ही खानदान के एक फर्द का तस्करा हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर के अफराद में से जैसे जनाब अब्दुल्ला ने जाकर बैठ करता है जो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह के शौहर थे, वो इमाम के साथ करबला नहीं गए, इमाम के साथ मदीना तर्क नहीं करते। इसी तरह से जनाब मोहम्मद हनफिया के अहम किरदार हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने सगे भाई हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे, और इमाम ने खुद मदीना छोड़ा, इमाम खुद छोड़कर गए। इमाम ने कहा था आप यहाँ पर मेरी आंख बंद कर रहेंगे, मदीना में रहे ताकि इमाम की एक आंख मदीना में हो, जान से रहे कि क्या हो रहा है, देखते रहे कि क्या हो रहा है, मदीना के सियासी हालात क्या है, मदीना में लोग इमाम के तहरीक के हवाले से इमाम के क़याम के हवाले से क्या नजरियात रखते हैं। तो इमाम ने कुछ अच्छे लोगों को जानते बूझते मदीना में छोड़ा था और उनको साथ नहीं लिया था। इन्हीं में से एक शख्स है जनाब मोहम्मद हनफिया जो इमाम के अपने सगे थे, इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्का में मुलाकात की, इमाम अलैहिस्सलाम की मक्का में मुलाकात करते मक्के में इमाम 5 महीने रुके, ये हज की गरज से मक्के आते हैं और इमाम की ज़ियारत की नियत से मक्का आते। जब मक्के में आते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेशकश करते, ये सारे मामलात में इसलिए आपको सुना रही हूँ ताकि हमें और आपको पता चले इस दास्तान में करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कौन कौन से नशेब व फराज को देखा है, कितने ऐसे भी लोग थे जो इमाम को रोक रहे थे और इमाम का यकीन, इमाम का अल्लाह पर भरोसा, इमाम का अपने हदफ और अपने मिशन को रोजे रोशन की तरह से देखना, इसे कहते हैं एनु यकीन, आग से देखने के बराबर यकीन हो, ऐसे बिल्कुल जैसे मैं आपको देखकर आपको महसूस करके यकीन करती हूँ, इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत को देखो। इन्होंने भी इमाम को रोका और ये कहा कि आप जानते हैं कि कूफे वालों ने आपके भाई के साथ वफा नहीं, कूफे वालों ने आपके पितरे ग्रामी के साथ वफा नहीं, मैं इस बात से फारिग हूँ कि आप जाएंगे और मारे जाएंगे, वो आपको धोखा देंगे, फरेब करेंगे आपके साथ, आपके साथ मुसलमानों का कत्ल होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैंने जाना है और अल्लाह ने यही चाहा कि मैं इराक की तरफ रवाना हूँ, मैं हर किस मक्का में नहीं रुकूंगा। मक्का में क्यों नहीं रुकना चाहते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? Thank you. کیونکہ مکہ اللہ کا گھر, اور جیسے کہ گزشتہ مجالس میں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ذلحج کو خانہ کعبہ کو ترک کیا, آٹھ ذلحج کو بیت اللہ کو چھوڑا. امام فرماتے ہیں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یزید اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے مجھے خانہ خدا میں قتل کر دے گا, اور اللہ کے گھر کی حرمت اور پاک کو خدشہ ہے. امام نے یہ کہا کہ میں ہتھیاں دے. اب ایک اور پیشکش لوگ دیتے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ عراق نہ جائیں, آپ یمن چلے جائیں اور اپنی جگہوں کو تبدیل کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی بات کے اوپر غور کروں گا, سوچوں گا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں جاؤں گا, اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا, بلکہ محمد علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی بات کے اوپر غور کروں گا. یہ وعدہ کیا امام نے قول دیا, انہیں کہا جملے میں کہ میں نے وعدہ کیا. لیکن جب محمد حنفیہ اگلی صبح ملاقات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے تو کیا دیکھتے کہ امام جانے کے لیے تیار ہے. امام نے اپنا قافلہ تیار کیا ہوا ہے, رفتہ سفر بدا ہوا ہے اور مولا روانہ ہوا. اب ان کے لیے حیرت کی بات تھی, آ کر پوچھتے ہیں امام کی اونٹ کی لگام کو ہاتھ لے لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے کل مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا, اے میرے بھائی آپ نے کل مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے مشورے کے اوپر غور کریں گے, اب آپ روانہ ہو رہے ہیں. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا, آپ کے جانے کے بعد میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیا, اور مجھ سے میرے نانا نے یہ کہا کہ حسین روانہ ہو جاؤ, اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہے. امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کو مختلف جگہوں پر خواب میں بھی دیکھا, اور پھر جب محمد رضویہ نے کہا اچھا آپ جا رہے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیں, آپ کو پوری تاریخ کربلا میں نظر آئے گا, تو سب کو معلوم تھا کہ عورتوں اور بچوں کو لے جانے کا کیا نتیجہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملے میں جواب دیا, اللہ نے یہ چاہا ہے کہ وہ تمہیں قیدی دے, خدا نے مشیت کی مشیت اور اذن دے کہ قیدی دے. بس اس جملے کو سن کر انہوں نے اتنا للہ و اتنا الیہ راجعون کا جملہ تھا کلمہ اس طرح جا پڑا, اور امام کو خدا حافظی کیا, الوداع کیا. محمد حنفیہ وہاں پر موجود تھے. کل انشاءاللہ جناب عبداللہ بن جعفر کے بارے میں بات کریں گے, کیوں جناب عبداللہ بن جعفر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے. یہ بھی ایک واقعات کربلا کا سوال ہے, کیوں جناب زینب کے شوہر نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں کیا, باوجود اس کی ان کی زوجہ بھی گئی تھی, ان کے دونوں بیٹے بھی گئے. محمد حنفیہ سے امام الوداع کرتے ہیں. اب اس میں اور تاریخ کے دوسرے واقعات کو دیکھ کر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, سوال اٹھتا ہے کربلا کے حوالے سے جتنے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھے ہمیں ان کے جوابات ڈھونڈنے چاہیے, کہ ہم دوسرے مقاصد فکر کے لوگ ساتھ اسکولوں میں اور کالجز میں مختلف جگہوں پر بیٹھتے ہیں, اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اچھا ہاں اگر ایسا ہی تھا جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے وعدہ تفلی نبھایا ہے, جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, تو پھر نعوذ باللہ خاتم میں دہن امام حسین علیہ السلام کا اپنا کیا کمال تھا, جب ایسا ہونا ہی تھا تو امام حسین علیہ السلام کی اپنی کیا فضیلت تھی. یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا, تو جو کچھ کربلا میں ہوا وہ تو اللہ کی مرضی تھی. اب اسی کے مقابلے میں دوسری جانب سے یہ بھی ایک بات سوال آتا ہے ذہن میں کہ پھر جو کوفے والے تھے, جو قاتلین امام حسین تھے, ان کی کیا غلطی تھی؟ جب اللہ نے چاہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل ہو, بہرحال ایک مقتول کے لیے ایک قاتل کی بھی ضرورت ہوتی, جس کو قتل ہونا ہوتا ہے اس کے لیے قاتل کی بھی ضرورت ہوتی. لیکن اعتقادات کے مسائل میں گمراہی کے بہت چال, بہت زیادہ انسان کی ضلالت اور بھٹکنے کے امکانات ہوتے ہیں. مثلاً کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو ظہور سے پہلے گناہ بہت زیادہ ہوں گے, جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ وقت ہوگا جب دنیا ظلمتوں سے بھری ہوئی ہوگی, لوگ ہر طرح کے گناہ کر رہے ہوں گے. اس لیے نعوذ باللہ امام کے ظہور کی تیاری یہ ہے کہ لوگ گناہ کریں. ہم گناہ نہیں کریں گے تو ظہور کیسے؟ یہ ایک برائی، یہ ایک گمراہی کا باب. ایسے ہی کچھ لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی کیا فضیلت، جبکہ اگر ہم اس بات کے اندر غور کریں اور ہمیں عقائد پتا ہو کہ اسلامی عقائد میں کیا ہے، تو اللہ کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خدا کا ارادہ تکوینی ہوتا ہے، جو بعض معاملات میں مثال کے طور پر اللہ کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ کوئی انسان پیدا ہو، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جب چاہتا ہے خدا کوئی پیدا ہو تو پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کا ارادہ تکوینی ہوتا ہے کہ کس کو بیٹے دے کس کو بیٹیاں دے. اللہ کا ارادہ تکوینی ہے کہ کس کو کتنی زندگی دے، کسی کو 70 سال دی، کسی کو 50 سال دی. اللہ کا ارادہ تکوینی ہے کہ مثلاً کوئی بیمار بھی ہے وہ بھی 20 سال جیتا ہے. خدا ہے زندہ رکھنے والا، خدا ہے مارنے والا، ایک دن کی بیماری بھی نہیں ہوتی لوگ مر جاتے ہیں. یہ پروردگار عالم کا ارادہ تکوینی ہے جو بہت سارے مسائل میں خدا نے متعالی اپنا ارادہ جب دکھایا تو کن فیکن کو بتایا سورہ یاسین کی آخری. تو اللہ چاہتا ہے جیسے ہی چاہتا ہے ہو جاتا ہے، یہ خدا متعالی کا ارادہ تکوینی. لیکن کچھ ارادے پروردگار عالم کے تشریح ہوتے ہیں، یعنی اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، لیکن جب تک ہم عمل نہیں کرتے کام نہیں ہوتا. سال بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے تمہیں امر کیا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف سے اور احسان سے زندگی گزارو. یہ اللہ کا ایک ارادہ، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ ہم اور آپ نبی حسین آ کر بیٹھے. اس میں سب شامل ہو رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں شامل ہو رہے. بات ایسے بھی شیعہ ہیں جو مانتے ہیں علی بیت کو، کہتے چاہتے معصومین ان کے نام بھی لیتے، پھر بھی اتنے بدبخت ہیں تو نہیں آتے مجلس میں، مجلس میں آ کر نہیں بیٹھتے. ان کو اللہ نے چاہا تھا کہ آئے، اللہ چاہ رہے وہ نہیں آئے، کوئی اور آ جائے گا، نبی حسین کافی رہے گا. تو ہر ایک کی مرضی ہے کہ وہ یہاں آ کر بیٹھے یا نہ بیٹھے. اللہ نے ارادہ کیا تھا شہادت امام حسین کا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے عمل کیا ارادے سے، اپنے ارادے سے. اس میں امام کا اختیار تھا، امام کو پتا تھا اللہ نے چاہا ہے، امام اس کے سامنے آگے بڑھ سکے. اب دیکھیے وہ شہادتیں جو اچانک ہو جاتی ہیں، مثلا کراچی میں مسجد حیدری میں بم بلاسٹ ہوئے، مسجد علی رضا میں بم بلاسٹ ہوئے، یا مثال کے طور پر بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کو گن پوائنٹ پہ شہید کر دیا گیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو گھروں میں آ کر ختم کر دیا گیا، اغوا کر دیا گیا، غائب ہو گئے. کیوں غائب ہو گئے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کیوں بم بلاسٹ ہوئے علی مسجد میں، علی رضا مسجد میں؟ اس وجہ سے خوشیوں کی مسجد تھی، اس وجہ سے کہ وہ غم حسین میں شریک تھے، جلوس کے اوپر دھم مانگا ہو گیا، سوسائڈ بمبر ڈالے. یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مرنے والا جو شہید ہو جاتا ہے پہلے سے اپنی شہادت سے آگاہ نہیں ہوتا کہ میں مرنے جا رہا ہوں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی آئے گا مجھے ایک منٹ میں ختم کر دے. لیکن پھر بھی ہم اس وجہ سے، کیونکہ وہ محبت اہل بیت میں، اس جرم میں کہ وہ امام بارگاہ میں گیا تھا اور اہل بیت کی مجلس میں بیٹھا تھا، اس کو مارا گیا، شہادت کے ہم یہ شہادت. لیکن شہادت بہت افضل درجے کی، اعلیٰ درجے کی شہادت نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص اپنے ارادے سے جان بوجھ کے موت کو دیکھ کر موت کی منہ میں نہیں گیا، اچانک مسجد حیدری میں دھماکہ ہو گیا، اچانک مسجد علی رضا میں دھماکہ ہو گیا. لیکن سید الشہداء کی فضیلت اس بات سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے اپنی شہادت کو اور بڑھتے جا رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا ایک ایک مصیبت کے اوپر اور امام آگے جا رہے. فرض کریں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی جگہ پر جائیں گی، وہاں پر اتنی مشکلات آپ کو اٹھانی، پہلے سے آپ کو میں نے ساری مشکلات بتا دی. بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مشکلات کی خبر ہو جائے تو پیچھے ہٹ جائے، نہ مشکل کام ہم تو نہیں جائیں گے. اب جب مشکل کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، تب تو مشکلات اٹھا ہی لیتے. لیکن دیکھا آپ نے کتنی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم تو آتے ہی نہیں، پہلے سے پتا ہی نہیں تھا آپ کیا کریں، تو مجبوری ہے. लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रही हैं, आपको नंगे पांव जाना होगा, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रही हैं, आपको प्यासा रहना होगा, वहां पर खाना आपको सिर्फ एक वक्त में मिलेगा, इतने किलोमीटर पैदल चलना होगा, ये सारी बातें, और फिर आप वो सारी मुश्किल को पहले इसके जहन में रखते हुए जाएंगी तैयारी के साथ, खुशी के साथ, तब ये एक इत्मीनान नफ्स की मंजिल होगी, मुतमईन भी रहे। लोग हज पे जाते हैं, वहां की मुश्किल देखते हैं, उनका खराब हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत के लिए गए जानते बूझते, इल्म रखते हुए और बहुत अच्छी तरीके से एक एक मुश्किल को जानते थे, शहादत के बाद के मसाइल को भी जानते थे। इससे मौला की फजीलत में इजाफा होता है, उनके मर्तबे में इजाफे का सबब है ये सारा इल्म जिसको मौला ने बता भी दिया। अगर इमाम ये सारे खुतबात ये सारी बातें नहीं बताते कि मैं क्या देख रहा हूँ और क्या होने वाला है, हम ये कहते हैं कि अचानक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में फंस गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में घेरे नहीं गए, करबला में फंसे नहीं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इरादे से उस मुश्किल को बर्दाश्त कर। इसलिए मौला की फजीलत इस शहादत के सबब से इतनी बड़ी कि परवरदिगार आलम ने उन्हें सैयदुश्शुहदा कहा, अल्लाह ने उन्हें नफ्से मुतमईना कहा, ये फरमाया कि तुम मुझसे राजी हो, मैं तुमसे राजी हूँ। परवरदिगार आलम ने जिक्र हुसैन को इबादत करार दिया, परवरदिगार आलम ने इतना उनका मर्तबा बुलंद किया कि तमाम मसाइल में मुश्किल में सब वक्त में अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करता है, बेहतरीन वसीला मिसबाह-उल-हुदा व सफीनत-उन-निजात, कि वो हिदायत के चिराग है और कश्ती निजात। बहुत बड़ी हदीस है, छोटा सा जुमला है लेकिन इसका मफहूम बहुत ज्यादा। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हर अहम दिन में रख दी गई, कोई भी अहम दिन हो, मसलन शबे बरात हो, 15 रमजान की शब हो और दूसरी तारीखें हैं, मसलन शबे कद्र है, इसी तरह से रोज़े अरफा है, अहम दिनों में ईदों में ईद फित्र है, ईद कुर्बान है, इन तमाम दिनों में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं। परवरदिगार आलम ने उनकी मंजिलत को इतना बड़ा किया कि वारिस अंबिया करार दिया। वारिस अंबिया 1,24,000 पैगंबरों के वारिस थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वारिस कौन है? इमाम हुसैन का वारिस हमारे वक्त के इमाम। इमाम के वारिस हमारे वक्त के इमाम, जो काम 1,24,000 अंबिया न कर सके वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। एक इमाम ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में हमें ऐसा क़याम नजर आता है, उसके बाद ना इमाम सैयद सज्जाद ना इमाम बाकर, किसी भी इमाम की जिंदगी में इस तरह का क़याम और जंग नहीं है, एक शहादत नहीं है। एक शहीद करबला थे और एक हमारे वक्त के इमाम होंगे जिनका इनकलाब होगा, जिनका जिहाद होगा, जिन्होंने तलवार से जंग लड़नी है। परवरदिगार आलम ने बीच में जो फासला रखा है वो तैयारी के लिए रखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जंग लड़ते हैं उनको जाहिरी शिकस्त होगी, फर्क ये होगा कि जब इमाम ज़माना जंग लड़ेंगे तो उनको जाहिरी कामयाबी होगी, जब मौला जंग लड़ेंगे तो परचम इस्लाम दुनिया के एक एक गोशो किनार में लहराया जाएगा। यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बाकी रहा यजीदियत मिट गई, यजीदियत बाहते हो, लेकिन जब इमाम जमानत तशरीफ लाएंगे तो यजीद भी बाकी नहीं रहेंगे, दुनिया अदल और इंसाफ से पुर हो जाएगी। हमने उस वक्त की तैयारी करनी है, अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसहार के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह से इमाम ज़माना के सिपाही बनाने। आप ख्वातीन का सबसे अहम किरदार, हम ख्वातीन का सबसे ज्यादा अहम किरदार है कि जितनी पाकिजगी हमारे अंदर होगी उतनी पाकिजगी हम नस्लों में मुंतकिल कर सकेंगे। कल आपके सामने एक हदीस सुनाई थी और उसका कुछ हिस्सा परसों सुनाया कि हम कैसे शिया बने। आज मैं इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इमाम ने फरमाया कि हमारे اشیاء کون ہوتے ہیں، اشیاء کی کیا کیا صفات ہیں، یہ صفات ہم نے اپنے بچوں میں منتقل کرنی ہے. اگر ہم بچوں کو ایسا نہیں بنا سکے تو امام کا ظہور مؤخر ہوتا ہے. جتنا امام کا ظہور مؤخر ہوگا ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو پہچان. امام کا شیعہ مولا کا منتظر وہ ہوگا جو متوازی ہوگا، جو اپنا اصلاح نفس کر رہا ہوں، وہ ہوگا جو امین ہوگا، امانت دار ہوگا. مولا کا شیعہ وہ ہوگا جو دوسروں کے ساتھ سچ بولنے والا ہوگا، جھوٹ بولنے والا نہیں. مولا کا شیعہ ہوگا، کل ہی یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، جو کہ آج چند نکات بتا رہی ہوں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والوں کو. مسلسل میں آپ کو ایک آدھ واقعہ مانگنے والے سے سنا دوں، کیونکہ ہم خواتین یہ ذمہ داری ہے کہ حقوق العباد کو اپنے بچوں کو سکھائیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اس میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہوا، روزے رکھتا ہوا، علم حاصل کرتا ہوا، پھر بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں کمزور ہے. تین انسان کے رابطے ہیں، انسان کو تین طرح کے رابطے زندگی میں گزارتے ہیں. ایک اس کا اپنے نفس کے ساتھ رابطہ، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. تزکیہ نفس کے لیے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے. جب انسان اپنے نفس کے ساتھ رابطہ درست کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، غیبت نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں، اپنے دل کو پاکیزہ کروں، کسی کا کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، سوء ظن نہ ہو، بدگمانیاں، یہ ساری چیزیں اپنے دل سے ہم پاک کریں. ایک رابطہ ہمارا، دوسرا رابطہ اپنے رب کے ساتھ، خدا کے ساتھ رابطہ. اس رابطے کو بھی ہمیں بند قرار کرنا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے. ہم توحید کے مرتقب ہوں، عدل کے مرتقب ہوں، عمل کریں جو اللہ نے حکم دیے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. ایک رابطہ، تیسرا رابطہ ہمارا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی سمجھے، اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر ہم اعمال صالحہ کرنا چاہتے ہیں، مومن با عمل بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں تین رابطے برقرار کرتے ہیں. حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بھی درست کرنا. کوئی بھی انسان کھڑا ہو جائے کہے کہ میں اس میں سے دو چیزیں اٹھا لیتا ہوں، ایک چھوڑ دیتا ہوں، مطلب میں حقوق العباد کو انجام دیتا ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اپنے ہمسایوں کی خدمت کروں گا، میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اسی طرح سے میں اندر سے اپنے آپ کو اچھا بناؤں گا، بس وہ والا جو چیپٹر ہے نا اللہ والا وہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا، نماز نہیں پڑھوں گا، روزے نہیں رکھوں گا، عبادت نہیں کروں گا، قرآن نہیں پڑھوں گا، مجھے اس والے چیپٹر سے بڑی پریشان، یہ دو کھول لیتا ہوں، ایک بند کر دیتا ہوں، بخشش نہیں ہو سکتی. مولا نے بتایا کہ شیعہ وہ ہے جو عبادت گزار ہوگا، بے نمازی نہیں ہوگا، بے روزے گار نہیں ہوگا. اب اگر کوئی یہ کہے میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں علم بھی حاصل کروں گا، عمل بھی کر لوں گا، لیکن یہ جو حقوق العباد والا چیپٹر ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے، اس کو بند کر دوں. ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، علم بھی حاصل کر لیں گے، اپنے آپ کو بھی اندر سے بنا لوں گا، مثلا بغض نہیں رکھتا، کسی کا کینہ نہیں رکھتا، دل میں نفرتیں نہیں ہیں، محبتیں ہیں، کوئی گناہ نہیں سکتا، رابطہ نہیں رکھوں گا، ملوں گا نہیں، کسی کے پاس جاؤں گا نہیں، کسی کو بلاؤں گا نہیں، کسی کی خدمت نہیں کروں گا، تو بھی نہیں چلے گا. اب کوئی یہ کہے کہ ہاں میں یہ دونوں کام چیپٹر کر لوں گا، عبادت کا بھی کر لوں گا، اللہ والا رابطہ بھی، اور بندوں کا بھی چیپٹر کھول لوں گا، جو اپنے ساتھ رابطہ ہے وہ نہیں رکھوں گا، تزکیہ نفس نہیں کروں گا، گناہوں کے ساتھ ہی دونوں کام کروں گا، کینہ بھی ہے نماز بھی پڑھوں گا، دل میں بغض ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر لوں گا، ان کو ڈانٹوں گا بھی، ان کو ماروں گا، ان کو گالیاں بھی دوں گا، سب اپنے آپ کو ہی بنایا. وہ دونوں چیپٹر کھول لیے، نماز بھی پڑھ لی، نماز کے بعد لڑائی بھی شروع کر دی، نماز بھی پڑھ لی، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک بھی کیا، اپنے آپ کو نہیں بنایا، عبادت بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ رابطے بھی رکھے ہوئے، برے ہی صحیح. جب برے رابطے رکھے کیونکہ اپنے آپ کو نہیں بنایا تو بھی کوئی فائدہ نہیں. तो आमाले सालिया के लिए हमें ये तीनों चैप्टर खोल के उनको सही तरीके से अंजाम देना होगा। अल्लाह ने बताया है वालिदैन टॉप पे रखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हक माँ बाप का। अगर किसी ने बाकियों के साथ अच्छा सलूक कर लिया, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक कर लिया, अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक कर लिया, घर में आके अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर, ये भी बुरा। सबसे ज्यादा माँ बाप के हक को बताया और मर्दों की गर्दन पे सबसे ज्यादा हक माँ का बताया। अगर कोई मर्द है, आदमी है, उसकी गर्दन पे सबसे ज्यादा हुकूमत इबादत उसकी माँ का। कोई औरत है तो परवरदिगार ने कहा औरत की गर्दन पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। अल्लाह ने आसानी कर दी, परवरदिगार को पता था कि ये निजाम कैसे चलता है। अब जो बीवी है वो शौहर के घर में जाएगी, अपनी माँ का हक इतना नहीं निभा सकती, शौहर का हक उसकी गर्दन पर ज्यादा। जो मर्द है वो अपनी माँ का हक सबसे ज्यादा। अल्लाह ताला ने बता दी किसी चीज में मुश्किल नहीं रखी अगर हम खुद बैलेंस होकर चले, इस्लाम को समझ कर चले, इस्लाम को समझे कि अल्लाह ने हमसे क्या चाहा। जब खुदा हमसे जो चाह रहा है हम करते रहे तो सही ट्रैक पर रहे, सोचे कि हमने क्या करना है। वालिदैन के हक में दो चार जुमले रोजाना में आपके सामने गए, इतना हक बताया गया। बाज लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए फर्जन उनके लिए कुछ नहीं कर, हमें अच्छा खाना नहीं खिलाया, हमें अच्छा लिबास नहीं पहनाया, अच्छी तालीम नहीं दी, अगर माँ बाप ये कर लेते तो ये हो जाता, अगर माँ बाप वहां पढ़ा देते तो आज हम ये बन चुके होते, माँ बाप ने ये सिखाया होता तो हम ये सीख चुके होते, शिकवे शिकायतें करते। जबकि माँ बाप अगर काफिर है, माँ बाप अगर जालिम है, माँ बाप अगर औलाद का हक नहीं दे रहे, कैसे भी माँ बाप बदतमीज माँ बाप हो, किसी भी किस्म के माँ बाप हो, इस्लाम ने कहा उनके साथ उसने सलूक करना, कैसे भी माँ बाप हो उनके साथ उसने सलूक तुमने करना। अगर माँ बाप जालिम भी है, जालिम माँ की भी आंख में आंख डालकर औलाद घूर नहीं सकती, गुनाह घूरा तो गुनाह हो जाएगा। गजब से देख नहीं सकती, गुस्सा करके लाल पीले होकर माँ को हम गुस्से में देख नहीं सकते, गुनाह है। अगर जालिम भी है उसके साथ फिर भी रहम दिली के साथ अच्छे तरीके से पेश आ जाए, गुस्सा आए तो पी जाए, गुस्सा आए तो बर्दाश्त करे, सब्र करे। माँ बाप अगर ऐसे हैं तो उनके मुकाबले में सब्र और तहम्मुल के साथ इस्तक़ामत के साथ चलना होगा। और अगर कोई औलाद अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर मोहब्बत से शफ़क़त से निगाह डालती तो उसको इबादत करा दिया जाए, चाहे माँ बाप कैसे हो, माँ बाप के चेहरे के ऊपर देखना इबादत, मोहब्बत से रहमदिली से उनको निगाह करना इबादत है, सवाब है। शरीयत ने हमें सवाब कमाने की बेशुमार जगहें बताई, अगर हम सवाब कमाने वाले बन गए, अगर हम उखरवी मंजिल को हासिल करने वाले बन गए, हमें आखिरत की मंजिल की लालच हो जाएगी, हम आखिरत के लिए कुछ कमा, और ये काम उस वक्त होगा जब हम अपने नफ्स के ऊपर मेहनत करें, जब हमें ऐसी गलत जगहों के ऊपर सब्र करना आएगा। जब माँ बाप गुस्से में हो, जालिम माँ बाप है जिन्होंने कुछ नहीं किया, पर्सन माँ बाप के एहसान के लिए अगर कहा गया कोई औलाद इतना कुछ करे जितना रेत के जर्रात हो, बारिश के कतरात हो, कितना एहसान करे, तब भी वो माँ के एक रात का बदला नहीं चुका। इतनी वालदेन की एहसान और उनकी खिदमत को परवरदिगार आलम ने सराहा, ताकि हम और आप अपने वालदेन की कदर करें। अफसोस से कहना पड़ता है जब हम इस्लाम से दूर होते हैं तो हम अपने वालदेन के हुकूक से भी गाफिल हो जाते हैं। दुआ है सैयदे सज्जाद की, सही पैगाम है सज्जादिया में, इमाम फरमाते हैं मुझे याद नहीं आता, मैंने यहाँ जिक्र किया और इसलिए बयान कर रही हूँ, एक औलाद के हक में दुआ है और एक वालदेन के हक में दुआ है। इसे मौला ने कहा कि परवरदिगार मुझे इनकी खिदमत में ऐसे मजा आए, मजे को बता दो, माँ बाप की खिदमत भी करें तो लुत्फ हासिल करें, नमाज पढ़े तो लुत्फ हासिल करें, जो काम कर रहे हैं घर का काम करें लुत्फ हासिल करें, ये हमारी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए जब हम काम अंजाम दें, उससे हमें सुकून मिले, ऐसे मजा आए जैसे किसी खौफ आलूद आंख के लिए नींद होती है। जब इंसान को बहुत नींद आ रही हो तो सबसे अच्छी चीज आपके लिए सोना होता है। उस वक्त आसमान में कोई ब्रोच ला कर रख दे, कहे अच्छी ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है देख लो, फला काम कर लो, आप कहेंगे नहीं मुझे तो बस सोना। जो लुत्फ उस वक्त सोने में आ रहा है आप किसी चीज में नहीं आ रहे। खड़े खड़े लोग सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, सफर में सो जाते हैं। दीन का धोखा उस वक्त इतना लगता है जब बहुत नींद आ रही हो। इसी तरह से एक और चीज इंसान के लिए लजीज होती है, मौला ने बहुत में जुमला किया कि जैसे तृष्णा लब के लिए जुराए आग। हम लोग जब पानी पीते हैं दिनों में तो हमारी प्यास ज्यादा नहीं होती, हल्की प्यास में हम पानी पी लें। एक गर्मी के शदीद गर्मी के दिन हो, लंबे वाले दिन, और आप दिन भर काम कर चुकी हो, दिन भर जाग चुकी हो, रोजा बहुत शदीद लग रहा हो, 5-6 घंटे से प्यास बर्दाश्त कर रहे हो, जब इफ्तार का वक्त आता है उस वक्त जो हम जाम पीते हैं पानी, वो जो पानी होता है वो तृष्णा दहन के लिए जो सुरूर लेकर आता है। वाला कह रहे हैं मुझे अपने वाले की खिदमत में ऐसा मजा है, मेरे 10 सोपा आजा और जवान उनकी खिदमत से थके ना। ऐसा होता है इंसान थकन को महसूस ना, खिदमत करनी पड़ रही है अगर माँ बाप की तो थकावट का एहसास ना हो। जाहिर थकावट तो होती है लेकिन उसको महसूस ना करे। सख्ती तो जिंदगी में आती है, असली मसला है कि इंसान उसको महसूस ना करे। खवातीन के साथ ये मसला बड़ा खराब है, हम खवातीन अक्सर खवातीन यही होता है कि औरतें मजलूम होती हैं। अगर डिफेंस में आप चले गए वहां की औरत भी मजलूम, इसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बहुत माल है वो औरत भी मजलूम, जिसके पास कुछ नहीं है वो औरत भी मजलूम। क्योंकि ये एहसास है जो हम औरतों ने अपने सर के ऊपर ला दिया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम सख्तियों में और हर तरह के हालात में शुक्रगुजार हो। अगर बंदा शाकिर हो तो फिर हिम्मत उसकी बुलंद हो जाती है, अज्म और इरादा उसका कभी हो जाता है। तो सख्तियों में भी बेशुमार मसाइल को हल करता हुआ आगे बढ़ता चला है। करबला की दास्तान ऐसी है, करबला में इतने किरदार आपके सामने मैंने अर्ज किया खवातीन कि जिनका अज्म और इरादा बुलंद था, जिनको यकीन था, तवक्कुल था, अपने इमाम से सच्ची मोहब्बत थी, तो उन्होंने राह रास्त को राह हक को तय कर दिया। हम भी अगर अल्लाह के साथ अपना रास्ता राबता जोड़ ले, इस रास्ते पर आ जाए तो हमारे लिए जिंदगी की सख्तियां आसान हो जाएंगी, जिंदगी के मसाइल आसान हो जाएंगे। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वाला ही शिया होगा। अब आप किसी को देखें जो माँ बाप के साथ बुरा सुलूक कर रहा है, बाकी सारे चैप्टर उसके अच्छे हैं, सही भी है, अमल भी है, और वैसे परहेजगार आदमी मशहूर है, लेकिन क्या फर्क है? ये मौला कह रहे कि हमारा शिया नहीं है। इसी तरह से इमाम ने कहा कि हमारा शिया वो होगा जो बिना जरूरत दूसरों के बारे में जवाब नहीं खोलेगा, मगर अच्छा है दूसरों के मुताबिक जो गुफ्तगू करेगा वो अच्छी गुफ्तगू करेगा, मुझे बस नहीं करेगा, सुकनखोरी नहीं करेगा, सुकनचीनी नहीं करेगा, दूसरों के बारे में गुफ्तगू नहीं करेगा। खवातीन के साथ ये भी मुश्किल बहुत है कि हम कहीं बैठते हैं किसी जगह पर तो अक्सर यह होता है दूसरों का टॉपिक शुरू हो जाता है। आप अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहते हैं तो अपना वक्त बचा रहे, फालतू लोगों के साथ मत बैठे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुनाहगार होते हैं, उनका काम ही होता है फालतू बातें करते। अच्छे लोग हैं, मयारी लोग हैं, वो फालतू बातें नहीं करते, अपनी जिंदगी का औकात जाया नहीं करते। लोगों के बारे में भी गुफ्तगू करनी है तो अच्छाई में करें। खवातीन के अपनी खवातीन के साथ बेशुमार रिश्ते हैं, आपकी नंद है, देवरानी है, जेठानी है, भावज है, सास है, और पता नहीं सब घराने हैं, और आगे फिर बच्चों की शादियां होगी, कितने आपको रिश्ते निभा। इनमें जब दूसरों के मुतालिक गुफ्तगू हो तो अच्छाई में हो, बुराई में हो। हर इंसान के अंदर बुराइयां भी होती हैं, अच्छाई होती है। जिंदगी गुजारने का उसूल ये बताया गया कि अगर आप खुश रहना चाहते दूसरों की अच्छाइयां ढूंढे, बुराइयां बुराइयां ढूंढेंगे तो निकलती चली जाए, अच्छाइयां भी ढूंढे, अच्छाइयों को ढूंढे तो खुद भी पुरसकून रहेंगे, दूसरों को भी पुरसकून। कोई आपसे बुराई करना शुरू करते आप उसकी बुराई को अच्छाई में तब्दील कर दो, उसकी बात को वहां खत्म कर दो, या ये बताइए कि बुराई के मुकाबले में अच्छाई कैसे की जाती है। अगर हमने बुराई के मुकाबले बुराई का सबक दिया, अच्छा बदला लिया जाए, इंतकाम लिया जाए, ये साजिश चलाई जाए, अब ये पॉलिसी चलाई जाए, अब इस तरह से इसको गिराया जाए, इस तरह से नीचा दिखाया जाए जैसे खानदानों में होता है, तो फिर क्या होगा? हम शिया नहीं कह रहे, शिया वो है जो लोगों का तस्करा करता है, जवाब बोलता है तो अच्छाई में खोलता है, मगर एक जहां कहीं सच बोलने की जरूरत है, जैसे मैंने इशारा किया था कि वाजहों पर दूसरों के साथ अगर आपने गुफ्तगू करनी है तो दूसरों के ऐब कहीं कहीं पर खोलने की जरूरत है, जैसे रिश्ते का मसला है कि आपके हमसाय कोई रहता है, आपसे तहकीक की जाती है कि हम यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, आप बताइए आप नजदीक रहते हैं कि इनके मामला कैसे हैं, आपको पता है कुछ तो उस वक्त आप सच बोल सकती हैं, वरना अल्लाह का कानून यूं है, किसी को इजाजत नहीं दी खुदा ने कि हम दूसरों के ऐबों के ऊपर से पर्दा उठाए, बिला वजह में इधर उधर जाकर लोगों की बातें करें, दूध भेजेगा मोहम्मद वाले और पांचवें इमाम ने मजीद फरमाया कि हमारा शिया वो है जो कुरान की तलावत, कुरान से जिसका उन्स है, जिसको कुरान पढ़ने की आदत, रोजाना मोमिन को जो अल्लाह का बंदा है कुरान पढ़ना चाहिए, खुदा हमसे क्या कह रहा है, अगर हमें खुदा से इश्क है तो हमें देखना होगा अल्लाह हमसे क्या कहता है, वही में क्या है, कैसा शिया कैसा मुसलमान है जिसको यही नहीं पता कि कुरान कहता क्या है। रोजे महशर रसूल अल्लाह फरियाद करेंगे कि परवरदिगार मेरे इस कौम ने कुरान को महजूर कर दिया था, कुरान को तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था, कुरान को अपने घरों में ताकतों के ऊपर रखते थे, कभी कभार निकालते थे जब कोई मुसाफिर जाता था, कोई मर जाता था, कभी किसी को फूकना होता था, झाड़ फूक के लिए अपने काम रखे होते, जब कुरान का हजब जो है हिदायत पढ़ने के लिए आई, कुरान यानी बार बार पढ़ने वाली किताब, कुरान का मतलब ये बार बार पढ़ो, जितनी दफा पढ़ेंगे उतनी हमारी रूपा की जब होगी, रोजाना आदत होनी चाहिए एक इंसान को कि वो कुरान का कुछ हिस्सा पढ़े, पूरा सिपारा एक में पढ़ना जरूरी नहीं है, 25 आयतें 50 आयतें, आधा घंटा आप सोच लें, 15 मिनट सोच लें, कुछ तो पढ़े, 10 मिनट पढ़े जाए, लेकिन पाबंदी के साथ पढ़े, देखिए जो काम हम हर रोज करते हैं उसकी हमारी जिंदगी में तासीर होती है, अगर आप कोई जिक्र रोजाना करेंगे तब वो जिक्र असर दिखाएगा, एक दफा जिक्र पढ़ने से, आज पढ़ लिया कल आपने नहीं पढ़ा असर नहीं होगा, हम आज एक्सरसाइज करें कल ना करें असर पड़ेगा, जब तक आप 3 महीने तक मुसलसल मुशक्कत नहीं करेंगे आपको वजन कम नहीं होगा, जब तक आप मुसलसल 3 महीने तक वॉक ना करें, एक दिन की वॉक से थोड़ी वजन कम होना है, इसी तरह कुरान करीम भी हमारी रूह में नहीं उतरेगा जब तक हम मुसलसल उसको पढ़ते ना रहे, रोजाना ना पढ़े, इसलिए रोज पढ़ना अपनी आदत बनाए, हम पूरे साल में मतलब कुरान को 2-3 दफा खत्म करें और तर्जुमा भी पढ़े, तर्जुमे से हमें समझ में आएगा कि कुरान में है, जब तर्जुमा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हमें करना क्या है, कुरान जब पढ़ते हैं कितनी चीजें जो सामने आती है, इल्म हासिल होता है, इबरत हासिल होती है, कौन जो गुजर गई उन्होंने क्या किया, उन्हें क्या करना चाहिए, और इमाम ने पंजों ने इस हदीस के आखिर में ये फरमाया कि ऐ जाबिर, रिवायत की हदीस के राबी जो है वो जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, फरमाया ऐ जाबिर अल्लाह की किसी से बराबरदारी नहीं है, खुदा ने मुताल का कोई एक बंदा तो रिश्तेदार नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब परवरदिगार आलम की मखलूक है, सबको खुदा ने एक जैसा पैदा किए एक जैसी सलाहियत के साथ, इन्ना देना सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर, हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, रास्ते की हिदायत दी, अब तुम शाकिर बनो या काफिर बनो, शुक्रगुजार बंदों में अपना शुमार करो या गुनाहगार बंदों में अपना शुमार करो, हमारे अमल से है सब कुछ, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जुम्मन होती है, ठीक है, तो हमने अपने अमल से ये रास्ता ले, इमाम कह रहे हैं कि अल्लाह की किससे बराबर जाएगी, और हम अहले बैत किसी को जन्नत के परवाने नहीं देते, आतिश जहन्नुम से निजात के परवाने नहीं देते, अहले बैत किसी को जन्नत की टिकट नहीं बांट रहे, बल्कि अहले बैत कह रहे अमल करो, फरमाते खुदा की कसम हमारा दोस्त वो है जो अल्लाह का दोस्त, जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह से रابطہ जोड़ेगा वो हमारा दोस्त। और जो मासी है यानी मासियतकार, जो मासी है मासियतकार है गुनाहगार है वो अल्लाह का दुश्मन, जो अल्लाह की अतात नहीं कर रहा खुदा से दुश्मनी कर रहा वो हमारा भी दुश्मन। नबी अकरम आप तो मदीन के महफिल में मिलाद में गए होंगे, क्या फरमा रहे हदीस के साथ कर हम तो रोजाना पढ़, कई लोग कई कई दफा भी सुनते हैं। नबी अकरम ने कहा परवरदिगार ये मेरे अहले बैत है, इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, परवरदिगार जो इन्हें दोस्त रख के तू उसे दोस्त रख, जो इनका दुश्मन हो तू उससे दुश्मनी कर। और अहले बैत क्या कह रहे हैं कि हम उसके दोस्त हैं जो खुदा का दोस्त है, हम उसके दोस्त हैं जो रसूल का दोस्त है। रसूल ने क्या कहा, जो फातिमा से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। यही चेन आपको समझ में आ रही, ये सब इकट्ठा है, खुदा और कुरान अहले बैत ये सब अलहदा नहीं हो सकते। हम में से कोई आए वो कहे कि मैं खुदा को तो लूंगा अहले बैत को छोड़ दूंगा, कोई ये कहे कि मैं कुरान को तो लूंगा अहले बैत को छोड़ दूंगा, कोई कहे कि मैं अहले बैत को और खुदा को लूंगा कुरान को छोड़ दूंगा, कोई नहीं सकता। जो अल्लाह के पास आएगा वो अहले बैत के पास जाएगा, जो कुरान के पास आएगा वो अहले बैत के पास जाएगा, जो अहले बैत के पास आएगा वो खुदा और कुरान के पास जाएगा। नामुमकिन है कि अहले बैत के दरवाजे पर आ जाए और हिदायत याफ्ता ना हो, अहले बैत के दरवाजे पर आए और अहले बैत अपने पास रखे अल्लाह तक न जाने, अल्लाह का हाजी वो होता है जो खुदा तक पहुंचाने वाला हो। अहले बैत ने हर शख्स को खुदा का रास्ता दिखाया, अहले बैत ने हर शख्स को अल्लाह के नजदीक किया है, ये वसीला थे तकर्रुबे इलाही के, फबतहु इलैहिल वसीला, अल्लाह के पास वसीले के जरिए से जाओ। अलम पे आने वाला शिया खुदा से मोहब्बत रखने वाला हो, अलम पर आए गालिब बात को याद करे, गालिब बात से मांगे अल्लाह से ना मांगे कैसे हो सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आने वाला, फर्श अदा पर बैठने वाला, इस फर्श पर बैठे और खुदा को याद ना करे नहीं, क्योंकि अल्लाह के इज़्ज़त से ये लोग शफी हैं, अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त दी। खुदा ने कहा खुद से मांगो इनके वसीले। अब अगर कोई अल्लाह को बीच में से निकाल देता है सबसे पहले वैद से मांगता है, सिर्फ अहले बैत की नजर में खुदा तो है ही नहीं, अल्लाह को याद ही नहीं किया, सिर्फ अहले बैत से डायरेक्ट मांगो, खुदा को याद नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के हकाम के ऊपर अमल नहीं कर रहा, कुरान नहीं खोल रहा। मौला लिखा हुआ अशिया कुरान पढ़ने वाला, कुरान के ऊपर अमल करने वाला होगा तो फिर वो बन जाता है नुसैर गुमराह होगा। नुसैरियत जो कहती है अली अल्लाह अली तकीरों, फिर वो बन जाता है मलंग, वो बन जाता है किसी जगह पर धमाल डालने वाला फकीर, अली अली करता रहता है। अली कहती है हमारा दुश्मन, इमाम मंजू कहते हैं हमारा दुश्मन जो अल्लाह तक नहीं पहुंचता, जो इबादत नहीं करता, जो कुरान नहीं पढ़ता, जो कुलवाज नहीं अदा करता। इस्लाम में हर इस जिंदगी ये मौशरती जिंदगी है, तो शादी नहीं करेगा उसका ईमान सुतरे में, एक एक चीज हमें बताए, अगर हम उस तरीके से नहीं चल रहे हैं तो मौला भी हमें अपना शिया नहीं मानते, मौला भी हमसे मुंह फेर। कल आपके सामने एक हदीस बताई थी सिर्फ तस्करा करती हुए आगे चल रहे कि चार चीजों के मुताबिक हमसे रोजे क़यामत सवाल होगा, एक आपके बाल के मुताबिक हमारे और आपके बाल के, नंबर दो हमारी जवानी के मुताल्लिक क्योंकि बेहतरीन दौर, नंबर तीन हमारी उम्र के मुताल्लिक, और नंबर चार इमाम मासूम ने कहा हम अहले बैत के मुताल्लिक, वो नेमत जिससे रोज कहशर सवाल होगा वो हम अहले बैत, हमारे से पूछा जाएगा कि हमने इमाम जमाने के लिए क्या किया। अपने वक्त के इमाम को ना पहचानने वाला जाहिलियत की मौत, और इमाम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हमारे से दूरी का सबब तुम्हारे आमाल, अमाल अच्छे कर लोगे हमसे करीब हो जाओगे। ईमान से قرب کا ذریعہ عمل ہے. ایسے لوگ جو وعدہ ہو کر سوتے ہیں امام کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں, عقیدہ ہوتے ہیں امام کو خواب میں دیکھتے ہیں, امام سے ملاقات کرتے ہیں, رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں. ہم نہیں ایسے, کیونکہ اللہ اس درجے پر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے گے اس کربلا کے ڈر سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا. بچوں میں ابھی سے آدر ڈالے. اب تو الحمدللہ ہمارے شیعہ بچے قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے, ورنہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ شیعوں کے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. شیعہ خواتین ہیں, عربی میں نہیں پڑھنا آتا, اور ترجمہ اور سمجھنا تو دور کی بات, عربی بھی نہیں پڑھنا آتا. اب بچوں کو نسبت قرآن کی تعلیمات مل رہی, قرآن سکھائے بچوں کو, بچوں کو اخلاقیات سکھائے. کل بھی میں آپ سے کہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے بچے کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو کچھ سنایا جائے, تو بہترین وقت ہے تربیت کا. اور ایک نقطہ اس کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں کہ جو ماہرین ہیں سائیکالوجی وغیرہ کے, بچوں کی نفسیات کے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بچے کو جو بات رات کو سونے سے پہلے بتائی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کے دماغ میں ٹکتی ہے, سب سے زیادہ دماغ میں بیٹھتی ہے. جو بھی ہم میسج بچے کو کنوے کرنا چاہتے ہیں, بالکل اس وقت جب اس کو نیند آ رہی ہو آپ اس وقت اس کو سمجھائیں. جب بچہ کھیلنے کے موڈ میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے, بچہ اپنی زندگی میں مست ہے, اس وقت ہم اسے کچھ کہتے ہوئے نہیں سنے گا. لیکن آپ سونے سے پہلے اگر آپ روزانہ اس کو ایک حدیث سنا دیتی ہیں, ایک اچھی بات بتا دیتی ہیں, اس سے بچے کی تربیت ہوتی ہے. بچے کا ذہن کھلتا ہے جب ہم اس کو مختلف باتیں بتاتے. پتا میں نے اپنے بچے سے کہا کہ جنت میں حضرت آدم کو شیطان نے بہکایا اور وہ درخت جس سے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا, حضرت آدم نے ان کی توجہ دکھا تھا. اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ نے کیسے کہہ دیا, اللہ کی تو زبان نہیں ہوتی, اللہ کو نظر نہیں آتا, اللہ کا تو جسم نہیں ہوتا, تو وہ کیسے کہہ رہے. یہ سوالات بچوں کے ذہن میں ابھرتے, جب سوال ابھرتا ہے اس کا جواب ملتا ہے, جب اس سے تو اس کا علم بڑھتا ہے. فرمایا امام معصوم نے کہ سوال علم کی کنجی ہے, سوال سے علم کا دروازہ کھلتا ہے. بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے قوم بعض اوقات اہم چیزوں میں سوال ہی نہیں کر رہی ہوتی. تکلیف کے مسائل ہیں, نماز کے مسائل ہیں, کتنے سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھنے چاہیے فقہ کے اعتبار سے. فقہی مسائل کہ ہماری توجہ ہی نہیں سکار کے اوپر کہ ہم کیسے وضو کر رہے ہیں, کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, کیسے روزہ رکھ رہے ہیں, کیا کریں گے تو کیا سوال پیدا ہوگا. اس لیے جو ہونہار طالب علم ہوتا ہے, جو اچھے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, کلاس میں بھی ہم بیٹھتے ہیں 20 لڑکیاں سامنے, پتہ چل جاتا ہے کون سے بچے اچھے ہیں, کون سی لڑکیاں زیادہ, جس کی سوچ کام کر رہی ہے سوال ذہن اٹھے, سوال ذہن اٹھتا ہے, پوچھتا ہے, علم بڑھتا ہے. اور جس کی سوچ کام نہیں کر رہی, سوچ وچار نہیں ہے, سوال ہی نہیں. کبھی بھی بچوں کو سوال کرنے سے روکے نہیں, بلکہ ہر سوال کا ان کو مثبت جواب, تاکہ اگلی دفعہ بھی وہ سوال کرنے کا شوق رکھے. اور اگر بچہ آپ کا ایسا ہے جو زیادہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے, تو اس سے آپ سوالات کیجیے تاکہ اس کے دماغ میں سوالات اٹھے. یہی تربیت, وہ سوچے سمجھے غور کرے, چیزوں کو آپس میں رکھ دے, چیزوں کے متعلق واقعات کے متعلق سوال کرے. آپ نے کہانی سنا دی, آپ اس سے پوچھے اچھا بتاؤ اس سے سبق کیا ہے, اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے. جو اصلی سبق ہوتا ہے, میسج ہوتا ہے ہر واقعے کا, اگر بچہ آپ کا ذہین سمجھ جائے گا اسے یہ بتایا جائے, آپ کو بتایا گا اس میں یہ سمجھ میں آتا, اس کا لیسن یہ, آپ اس سے اپنے بچے کو ترقی دیں. بچوں کی پرورش میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, انتہائی باریکی ہے. لیکن جب آپ اللہ سے چاہیں گے پروردگار یہ امانت تیری ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمیں انہیں امام کا سپاہی بنانے کی توفیق, ہم ان کو پاکیزہ بنائے, ان کو ذہین بنائے, ان کو ہوشیار بنائے, ان کو معاشرے کے لیے فائدہ مند بنائے. جب آپ کی آرزوئیں یہ ہوں گی, جب آپ کی دعائیں یہ ہوں گی, جب آپ کی تمنائیں یہ ہوں گی, جب آپ کی خواہشات یہ ہوں گی, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. خدا نے کہا طلب کرو مجھ سے مانگو میں دوں گا, اللہ تو دینے والا ہے. ہم طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. بس ایک واقعہ اور اس کے بعد ہوتا ہے, اور مختصر سا واقعہ, بدبختی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے جب ہم اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ وہ تین چیپٹر آپ کے ضرور کھلے, ہم نے اور آپ نے وہ تین چیپٹر نہیں کھولے زندگی میں, اس کے اوپر عمل نہیں کیا, وہ پیچھے رہ جاتے. ایک عالم تھے, ان کے متعلق کویت کے ایک عالم نے خواب میں دیکھا. دوست تھے دو عالم, بہت پرہیزگار اچھے لوگ, उन्होंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ा सा बाग है, सरसा पुशादा बाग जिसका किनारा नजर नहीं आ रहा, इतना वसी बाग की नजर नहीं आ रहा कहाँ खत्म हो, और महल है उसके अंदर खूबसूरत सा महल। दरबार से पूछते हैं कि किसका महल है, किसका बाग है, तो उन्हें बताया जाता है कि हबीब शिराजी जो दोस्त है उनका बाग। अभी वो ख्वाब ही देख रहे होते हैं, ख्वाब में बाग को और महल को देख रहे होते हैं कि आसमान से बिजली गिरती है और ये महल ये बाग जल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब सुबह उठते हैं तो उनके ध्यान में आता है कि कोई ना कोई ऐसा मसला कल रात में हुआ है कि हबीब शिराजी ने अपने मकाम को, अपनी मंजिलत को, उस फजीलत को जो कर्ज किया था, जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी, उन्होंने जाया कर दिया। ये जाते हैं हबीब शिराजी के पास, उनसे पूछते हैं बताइए कि अल्लाह आपके साथ क्या हुआ। पहले वो टालने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कि कोई माजरा मामला ऐसा है जिसके पीछे राज है, बताइए क्या हुआ, फिर मैं आपको अपनी बात बताऊँ। उन्होंने कहा कि कल रात मेरी अपनी माँ से झगड़ा हो गया था, जिसमें मैंने माँ से गुस्ताखी, इतनी चीजें जो वो बना चुके थे महल और बागात अपने अच्छे कामों की वजह से, एक रात के एक वाक्य की वजह से, एक ज्यादती की वजह से जाया, सब कुछ आग ने भस्म कर दिया, सब कुछ खत्म। उन्होंने बताया कि लफाफ ने आपको ऐसे दी, आपके इस एक वाक्य ने आपकी माँ के साथ ज्यादती ने आपका सारा मकाम अल्लाह के सामने खत्म कर दिया। अल्लाह ताला उन सबको टॉपिक दे कि बाग बनाए, दरख्त बनाए तो उसकी हिफाजत भी करें, जन्नत में घर बनाए तो उसकी हिफाजत भी करें। आज आठ मुहर्रम से सात दिन गुजर गए, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ऊपर जान उठावट करने वाले उनके अलमबरदार वाली अब्बास का मातम थे। आज दिन तक हमने मुख्तलिफ अहबाब और बनी हाशिम के बच्चों का जिक्र किया, आज वाजी अब्बास हमारे बनी हाशिम का जिक्र किया। बोला कि मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हम सवा दो महीने में जिक्र करते रहते हैं, तो कितनी चीजें हैं जो रह जाती हैं। कि दस दिनों में तो तमाम अहबाब का नाम ही नहीं लिया जाता, तमाम शोहरा करबला का जिक्र भी नहीं किया जाता। कल भी मैंने कहा था कि इमाम हसन के छह फर्जंद थे, जिसमें से मतलब कासिम का मातम करते हैं, हजरत अब्बास के भी तीन और भाई थे करबला के मैदान, लेकिन हम हजरत अब्बास का जिक्र करते हैं, एक शहादत को तफसील के साथ बयान करते हैं। आज हम जनाब उम्मुल बनीन को उनके फर्जंदों का गुस्सा देते हैं, उम्मुल बनीन की चार निशानियां काम, चार बेटे थे कुल के कुल करबला में काम आ गए, कि वो अब्बास है जिनको खुदाए कायनात ने अल्लाह से तलब किया, अपने भाई अकील से कहा था कि अकील मुझे ऐसे खानदान की जौजा चाहिए जिसमें शजा हादुर हो, लड़ने वाले हो, ताकत रखने वाले हो, ऐसे खानदान की औरत फातिमा कलाबिया से मौला ने शादी की, और फातिमा कलाबिया पर हमारा सलाम कि जब दरे जनाब फातिमा तो जहरा पर आई है तो अपनी पेशानी को जमीन पर दिखा दी, फातिमा की दहलीज पर टिकाया और कहा कि ये घर मेरी आकाजादी का है, मैं कहा जनाब सैयदा की मंजिलत का हूँ, मैं उनके घर में कलीज बनकर आई हूँ, बस अदाकार हूँ। हम उर्सा देते हैं बीवी सैयदा को, फातिमा जनाबी हम के बेटे अब्बास जिनके ऊपर जनाब सैयदा और उनसे महशर नाज करेगी, जिनके दो कटे हुए बाजुओं के साथ बीवी सैयदा उनसे महशर शफात करेगी, वो अब्बास जिनका रूह को दबदबा इतना ज्यादा था कि किसी महफिल में आ जाते थे तो लोग खामोश हो जाते थे, लोग मरहूम होते थे जनाब अब्बास की जाहुल जलाल से, क्या शान और शौकत थी अब्बास की। अदाकारों बस करबला में ये बनी हाशिम का चांद इजाजत नहीं है लड़ने, किसी शुजा को इजाजत ना हो जंग करने की, कितनी बड़ी आजमाइश है। सब चले गए, अस्हाब चले गए, बनी हाशिम के जवान चले गए, अब्बास है और जनाब अली असगर। तारीख में लिखा है इमाम हुसैन के पास आए, कहा आका अब जीने की आरजू नहीं रही, मौला मुझे लंग जंग लड़ने दीजिए, मौला मुझे इतने जहाज दीजिए। इमाम से लड़ने की इजाजत तलब कर रहे हैं, इमाम इजाजत नहीं देते, यहाँ तक के इमाम ने जुमला अब्बास तुम मेरे काफिले के अलम बरदार, इस लश्कर के अलम बरदार अब्बास, बीवियों की ढारस तुमसे बंधी हुई है, बीवियों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है, अगर तुम चले गए तो इन बच्चों की और औरतों की आंख टूट जाए। जाने के अब्बास के बाद कुछ ना रहेगा, लेकिन अब्बास ने एक मरतबा गजे शहीदा की जाने देखा, लश्कर में पड़े हुए जरासों को देखकर कहा, मौला अब लश्कर मेरा हाल कैसा, मौला मुझे जंग की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास जाओ बच्चों के लिए पानी ले। रज़ादारों तीन मुहर्रम से लहरे फुरात पर पाबंदी मुहासरा किया हुआ था, बार बार हज़रत अब्बास थोड़ा सा पानी भर कर लाते थे, बच्चों की प्यास बुझाते थे। ये सत्ताए सदीना है जिन्होंने ख्याम हुसैन तक पानी पहुंचाया था। आज मौला कह रहे जाओ अब्बास पानी भर के लाओ, बच बच के सकीना आई, छोटे छोटे बच्चे अपने प्यारे लेकर मंगल रहे हैं कि वाली अब्बास पानी लेकर आएंगे, हम पानी पिएंगे। अब अब्बास को सकीना ने अपनी मश्क दी, खुदा हाफिज साहब अब्बास चले, अलम की भी हिफाजत करनी है, मश्क सकीना भी कानों पर है, तलवार भी हाथ में है। अगर मैं बहुत मुख्तसर पढ़ूंगी, लहर फुरात पर पहुंच गए 4000 मलाइन को वासले जहन्नम किया, मश्क सकीना को भरा, और जब वापस पलटे तो उर्मला को हुक्म दिया गया, देखो एक कतरा पानी का खेमों तक ना पहुंचे, किसी की जरूरत नहीं थी ना कि अब्बास से रूबरू जंग लड़ता, पुष्ट पर से हमले किए गए, एक बाजू कटा अब्बास से रजत पड़ी। खुदा की कसम अगर मेरा दाया हाथ खत्म कर दोगे तो अपने बाएं हाथ से दीन की हिमायत करूंगा, बाया
Bye.
شوقاتي.